इंसान का भला किस में है, ये महापुरुषों संतों गुरु पीर पैगंबरों ने ही युगों युगों से बताया है। वरना इंसान ना समझी के कारण अपना भी भला नहीं करता, ना अपने इस जन्म को सफल करता है और औरों के लिए भी बिगाड़ का और नुकसान का कारण बनता है। तो आज महापुरुष संत जन भी उसी कल्याण और उसी उद्धार के भाव को लिए हुए ये संदेश हर मानव हर इंसान को ये दे रहे हैं कि इंसान तू जीवन के मनोरथ को पहचान, ये जीवन का तेरा असली लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य की पहचान कर। अधिकतर दुनियावी प्राप्तियों को ही लक्ष्य बनाया जाता है और उसी के लिए सारी उम्र बिता देते हैं और आत्मा का कुछ बनता नहीं है, इसलिए जन्म व्यर्थ चला जाता है। वो दुनियावी प्राप्तियां इंसान को मोक्ष नहीं दे सकती हैं। अगर दुनियावी प्राप्तियां ही मोक्ष प्रदान करती, आत्मा को मुक्ति प्रदान करती, तो जितने भी राजा महाराजा सम्राट इस धरती पर हुए उन सबको ही मोक्ष मुक्ति मिल गई होती। लेकिन मोक्ष मुक्ति किसी शरीर की ताकत या दुनियावी पदार्थों या धन दौलतों के कारण या दुनियावी इल्म उनके कारण, ये किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं लिखा है कि इन साधनों से उनको प्राप्त हो जाती है या इन सामर्थ्यों के कारण आत्मा का कल्याण हो जाता है। आत्मा का कल्याण तो इस परमात्मा का बोध हासिल करके ही होता है, इसलिए इसको जो मुख्य लक्ष्य मानकर चलता है और इस तरफ जतन करता है और भाग्यवश ब्रह्म ज्ञानियों का संग उसको मिल जाए, फिर उसको ये मंजिल मकसूद मिल जाती है और उसको अपने निज घर की पहचान मिल जाती है और अपने आप की पहचान मिल जाती है। तो इसलिए महापुरुष संत जन आज भी यही संदेश दे रहे हैं कि उत्थिष्ठ जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो, जिस प्राप्ति के कारण तुम्हारा लोक और परलोक दोनों ही सवर जाएंगे। और जिसने भी इस आवाज़ को सुना और इस आवाज़ को सुनकर उस तरफ कदम बढ़ा लिए और अपना उद्धार कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर इंसान इस सुने को अनसुना कर देते हैं, इसको वो विशेषता नहीं देते हैं, इसको कोई अहमियत नहीं देते हैं। इसी के कारण भवसागर से पार उतरना हर किसी के हिस्से में नहीं आता है। महापुरुष बार बार झिंझोड़ते हैं, बार बार उसको एक सच्चाई सामने रखते हैं कि इंसान ये तेरी दौड़ धूप जितनी दुनियावी प्राप्तियों के लिए है, काश उतनी लगन ऐसी प्राप्ति के लिए होती जिसके कारण ये दोनों जहानों में हम माला माल हो सकते हैं, दोनों जहानों की हम बाजी जीत सकते हैं। लेकिन इंसान की दौड़ धूप और इंसान की मन की एकाग्रता वो केवल दुनियावी प्राप्तियों तक ही सीमित रहती है। और दुनिया संसार कब सुख का साधन बनी है, ये संसार खुद डुलायमान है, ये हमें अडोलता क्या देगा, ये खुद बंधन में है तो हमें बंधनों से राहत क्या देगा। इसलिए संसार के तुल्य इस निराकार को ही आधार मानना, इस निराकार को ही अपनाना, इसको जानकर आत्मा का कल्याण करना, ये महापुरुष संत जन ये संदेश ये पैगाम ये देते हैं। और इस प्रकार से अनेकों अनेकों महापुरुषों के कथन जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हर मानव हर इंसान तक पहुंचाए गए, लेकिन इंसान इन वचनों को सुनकर इसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं। वचनों को सुन भी लेंगे, वचनों को पढ़ भी लेंगे, वचनों को सुना भी लेंगे, लेकिन उस तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। इस पढ़ने सुनने को पुण्य का काम मान लेते हैं कि ऐसा पढ़ना सुनना एक पुण्य का काम है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि पढ़ना और सुनना महापुरुषों की वाणी मुबारक है, लेकिन केवल पढ़ने और सुनने तक सीमित नहीं रखना अपने आप को। जो उन्होंने इशारा किया है उस तरफ कदम भी बढ़ाने हैं। सबकी आत्मा है और ये परमात्मा की अंश है, और परमात्मा सीमित नहीं है, असीम है, कण कण में व्याप्त है। लेकिन अज्ञानता रूपी गांठ बंधी रहती है, आत्मा का उद्धार नहीं होता है, ये बोध होता नहीं है, ये प्राप्ति होती नहीं है, और ये कंगालता बनी रहती है। तो मीराबाई की वो गांठ खुली अज्ञानता रूपी, जो रविदास जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया, और इसी के कारण मीराबाई नाच उठी कि यही था प्राप्त करना बाकी, धन दौलत में भी मिल गई और भी बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ये सच्ची दौलत नहीं मिली थी। आत्मा को इसी की प्यास थी, आत्मा को तड़प इसी की थी, तो ये काम हो गया, ये गुरु की कृपा हुई। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो यही एक हर किसी तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि हे इंसान, तू इस तरफ गौर कर, तूने भी पाना है जो मीरा ने पाया, तूने भी पाना है जो तुकाराम जी के हिस्से में आया, तूने भी वो प्राप्त करना है जो भक्त प्रहलाद के हिस्से में आया, और तूने भी पाना है जो तमाम संतों महात्माओं ने पाया। उस पाने को पाना माना जाता है, वरना और सब कुछ पा भी लिया तो खाली के खाली रहते हैं। ये वो पाना है जिसके पाने के कारण हम भरपूर हो जाते हैं। तो ऐसी प्राप्ति हर किसी के हिस्से में आए, ये महापुरुषों संतों का हमेशा एक भाव रहा है कि इंसान कोई भी वंचित ना रहे ऐसी प्राप्ति से, कोई भी इस सच्चे धन से वंचित ना रहे। हर किसी के हिस्से में ये सच्ची दौलत आए, ऐसी दौलत जो शाश्वत है, जो आने जाने वाली नहीं है, जिसको कोई चोर नहीं उठा के ले जा सकता है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, जिसको वायु उड़ा नहीं सकती है। ये ऐसी दौलत जो किसी तलवार से कटे नहीं, ऐसी दौलत जिसको कोई जल भिगोए नहीं, ये ऐसी दौलत जो शाश्वत है, जो सदैव रहने वाली है, जिसको सत्य का नाम दिया गया है, ऐसी दौलत के भागीदार सभी बने। ये महापुरुष संत जन ये परोपकार करते हैं, ये संदेश देते हैं, ये आवाज़ देते हैं, ये गफलत की नींद से उठाते हैं, क्योंकि सोए हुए लुट जाते हैं, जाग जाते हैं तो माला माल हो जाते हैं। सोए सोए तो हमारा कोई भी काम दुनियावी भी नहीं होता है, वो भी हमें जाग कर ही करना पड़ता है। दुकानदारी अगर चलानी है तो दुकान पे जाते हैं तो जागते हैं, जागते हैं तभी दुकान पे जाते हैं। इसी प्रकार से कोई भी सर्विस करनी है, दफ्तर में जाते हैं तो जागना पड़ता है। सोए सोए तो ना कोई दफ्तर का काम हो सकता है, सोए सोए तो ना हम कोई भोजन कर सकते हैं, सोए सोए तो हम कहीं पर भी कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जागना पड़ता है। जब दुनियावी काम भी सोए सोए नहीं हो सकते तो ये लक्ष्य की प्राप्ति, ये प्रभु की प्राप्ति गफलत की नींद में सोकर कैसे हो सकता है संभव? ये इसके लिए जागना पड़ता है और इसलिए महापुरुष जगाते हैं कि इंसान तू जाग जा, इंसान तू नाता जोड़ ले, इंसान तू ये प्राप्ति कर ले, बाकी सब चीज़ें तो ये बाकी भी शरीरों में हो जाती हैं, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरख समान, ये तो बाकी भी शरीरों में ये प्राप्तियाँ ये सिलसिले हो रहे थे, लेकिन इंसानी जामा जो हमें मिला इसकी कुछ विशेषता है और इसकी विशेषता यही है कि तुझे ये मौका मालिक ने बख्शा कि तू अपना नाता इस परमात्मा से जोड़ ले, तू इस सत्य का बोध हासिल कर ले जो किसी जानवर या पशु की योनि में संभव नहीं था। ये भाग्य है तेरे ऊंचे के मानुष तन मालिक ने दे दिया, ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, तो ऐसे सुनहरी अवसर को तू व्यर्थ ना गंवा देना, ये हीरे जैसा जन्म ये कौड़ी के भाव मत गंवा देना, ये सत्य से नाता जोड़ ले, ये सत्य की प्राप्ति कर ले, अपने जन्म को सही मायनों में सफल कर ले, ये महापुरुष संत जनों ने चाहा। इसलिए महापुरुष याद कराते हैं कि इंसान जरा सोच जरा विचार कि तेरे जीवन की यात्रा किस प्रकार से तय हो रही है, तू कौन से लक्ष्य रखकर सामने उसका पीछा किए चले जा रहा है। ये सारी उम्र बिता देता है लेकिन तू दूर रहता है उस सच्चाई से, वंचित रहता है उस सच्चाई से और इस गफलत की नींद में सोया रहता है और ये जागृति तुझे प्राप्त होती नहीं है। तो महापुरुष संत जन वो ये देन देते चले आ रहे हैं, ये आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं कि इंसान ज़रा सोच कि ये वक्त तो गुज़र गया है, पहले भी गुज़र गया और अगला वक्त जो है सामने ये पता नहीं है कि कितने पलों का है। जी पाण्या चा बुड़बुड़ा रे भरोसा याचा नाही, कि इस प्रकार से ये पानी का बुलबुला है और यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि रात्र गेली दिवस गेले आयुष गेले जन्म आय उन काय केले विषयाचे सुख घेता हर घड़ी चिंता पन्ना नाई जन्म रे आता, कि रात दिन सुबह शाम ये उम्र बीती चली जा रही है। जैसे महापुरुषों के कथन के चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। इसलिए महापुरुष इस इंसानी शरीर को महत्व देते हैं कि तन मिला है, ये इंसानी जामा मिला है इस आत्मा के कल्याण के लिए, इसलिए इस शरीर का महत्व, वरना तो कोई महत्व नहीं है इन शरीरों का। शरीर तो हाथी का भी है, शरीर तो सुअर का भी है, शरीर तो गधे का भी है, शरीर तो घोड़े का भी है, इसी प्रकार से शरीर तो इंसान का भी है, तो शरीर ही है, लेकिन इंसानी तन की महत्ता है। इसलिए हीरे जैसा मोलक कहा है, वो किसी कारणवश कहा है और वो कारण यही है, उसी संदर्भ में उसी कंटेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि ये अपने पार उतारा कर सकता है, ये मंजिल मकसूद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वही बात के विषयों से सुख घेता हर घड़ी चिंता, के विषयों विकारों में पड़ा हुआ इस जन्म को गंवा देता है और ये जन्म ये बार बार हाथ आता नहीं है। तो इस प्रकार से महापुरुष भक्तजन ये संदेश हर युग में देते आ रहे हैं, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, हर युग में प्राप्ति करने वाले भी हुए और इससे वंचित भी अनेकों रहे। अनेकों ने अपना उद्धार कर लिया और अनेकों भवसागर में डूब गए, ऐसे वो थे जिन्होंने इस रोशनी को प्राप्त किया, इस बोध को हासिल किया, तो उनको यश प्राप्त हुआ। और अनेकों वो थे जो अज्ञानता के अंधकार को ही ढोते रहे, जो इस प्रकार से भ्रम और भ्रांतियों के बंधनों में जकड़े रहे, इस सच्चाई का सामना नहीं हो पाया। सारी उम्र बिता डाली लेकिन सच्चाई से सामना नहीं हुआ। और जीवन जो जीवन कहलाता है, सारी उम्र बिता दी फिर भी जीवन नहीं जी पाए, क्योंकि उसको मृतक कहते हैं। जो इस सच्चाई से टूटकर, इस सच्चाई से नाता ना जोड़कर, प्रेम भाव से युक्त ना होकर इस सफर को तय करता है, उसको मृतक मानते हैं, उसको जीवित नहीं मानते हैं। जीवित वो माना जाता है, जीवन जीवन कहलाता है वो, जो वाकई ही इस सत्य के साथ नाता जोड़कर जो व्यतीत होता है, उस जीवन को जीवन माना जाता है। वरना तो सांस लेते हुए भी मृतक माने जाते हैं, दिल की धड़कन होते हुए भी जैसे कोई दिल पत्थर माना जाता है। इसी प्रकार से सांस होते हुए भी मृतक, वरना तो मृतक उसको कहा जाता है जिसकी सांसों की लड़ी टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर महापुरुष उसको मृतक कह रहे हैं जो इस सच से अनजान है। जैसे गुरु पीर पैगंबरों के वचन के मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत, कि उसको मृतक कहते हैं जिसको इस भगवंत से प्रीत नहीं है, जिसने इस भगवंत के साथ नाता जोड़ा नहीं है, उसको मृतक कह रहे हैं। वो मृतक नहीं जो शरीर करके शरीर जिसका मौन हो गया है, बल्कि इन श्वासों के होते हुए भी मृतक वो जो इस सच भगवंत से प्रीत नहीं करता है, जो इस भगवंत से नाता नहीं जोड़ता है, उसको मृतक कहा जाता है। और दूसरी तरफ जिन्होंने इसकी प्राप्ति कर ली, उन्होंने सदैव का जीवन प्राप्त कर लिया, ये लोक का जीवन और हमेशा का जीवन प्राप्त कर लिया। जैसे महापुरुषों ने कहा है कि ता सद जीवन होए, तब सदा के लिए जीवन होता है। अगर इस संसार में रहते हुए हमने ये प्राप्ति कर ली, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया और अपना आप मिटा दिया, तो तब हमें सदा का लिए एक जीवन प्राप्त हो गया। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आए, यही एक प्रार्थना, यही शुभकामना ये की जा रही है। और हर किसी को यही पैगाम, यही संदेश दिया जा रहा है, ताकि हर किसी का उद्धार हो पाए, हर कोई पहचान करे कि उसका भला किस में है। और इस प्रकार से जहाँ पर आत्मा का कल्याण करेगा, वहाँ पर ये जीवन की यात्रा भी फिर इंसान बन के तय करेगा, हैवान बन के नहीं, शैतान बन के नहीं। ये जागृति जब आ गई तो फिर एक इंसान बन के ये जीवन जिएगा, यानी कि प्यार के साथ जिएगा, नफरत के साथ नहीं, दूसरे को लूट के नहीं, बल्कि दूसरे के काम आकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर, एक ऐसा प्यार भरा वातावरण स्थापित करके, दीवारों को गिराकर, गले मिलकर मिलाकर, ये फिर इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं। और ऐसा जीवन जब जिया जाता है इस जागृति के तहत, ऐसी भावनाओं से युक्त होकर, तो फिर सारे वातावरण को एक सुंदरता प्राप्त होती है, एक महकता हुआ वातावरण वो माना जाता है। वरना तो नफ़रतों की दुर्गंध एक झगड़े और लड़ाइयों के कारण एक खिंचाव वाला और पीड़ाजनक वातावरण। लेकिन महापुरुष संत जन भक्त जन वो इस प्रकार से ऐसी जागृति को प्राप्त करके और ऐसी भावनाओं से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं कि वो वातावरण को सुंदर बना देते हैं। जैसे फूल सुंदरता को बढ़ावा देते हैं, सुंदरता स्थापित करते हैं, और दूसरी तरफ कांटे वो एक हमें छलनी करते हैं, वो जख्म देते हैं। तो एक वातावरण को महकता हुआ बनाने के लिए एक फूलों की मानिंद एक भक्त महापुरुष संत जन प्रेम भाव से युक्त रहते हैं। और इसलिए हर मानव इंसान को भी यही प्रेरणा देते हैं कि जहाँ आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा को मोक्ष प्रदान करना है इस जीवन काल में, वहाँ पर इस जीवन को भी इस कदर जीना है कि तुम भी यश के पात्र बनो और औरों के लिए भी सुकून और चैन का कारण बनो। और वो नफरत के कारण नहीं होगा, वो लूट मार के कारण नहीं होगा, वो हिंसा के द्वारा नहीं होगा, वो तो होगा प्रेम के कारण, मिलवर्तन के कारण, करुणा और दया के भाव के कारण वो संभव हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसी भावनाएं नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं है, तो फिर तो जो संसार को वातावरण मिला हुआ है वो हम उसमें से गुज़र रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसा वातावरण जहां पर भय, जहां पर काट और मार, जहां पर जलना और जलाना, जहां पर मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, प्रांतीयवाद के नाम पर, रंग नस्ल कौमों के नाम पर किस कदर इंसान ऐसा विशाला वातावरण बना रहा है, इंसान इंसान का नुकसान करने वाला बना हुआ है, तो ये एक चिंता का विषय है। इसलिए भक्त महापुरुष संत जन स्थान स्थान के ऊपर ये प्रयास कर रहे हैं कि इंसान इस बात को समझें, इंसान समय रहते हुए संभलें, इस जागृति को प्राप्त करें, इंसान की तरह ये जीवन की यात्रा को तय करें, आप भी आनंद लें, औरों को भी आनंद देने वाले बनें। यही एक भक्तों महापुरुषों का एक लक्ष्य रहा है, ये उनका मंतव्य रहा है, ये उनका मकसद रहा है। और इसी मकसद के हेतु स्थान स्थान के ऊपर ये परोपकार हो रहे हैं, स्थान स्थान के ऊपर महापुरुष यही एक उपकार कर रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं, कहीं मराठी भाषा में, कहीं तेलुगु भाषा में, कहीं तमिल भाषा में, कहीं मलयालम भाषा में, कहीं पंजाबी में, कहीं सिंधी में, कहीं गुजराती भाषा में, कहीं अंग्रेज़ी भाषा में, यही संदेश दे रहे हैं, ताकि हर उस भाषा को जानने वाला ये जान सके कि उसका भला किसमें है। और इस प्रकार से ये संदेश हर किसी तक पहुंचाने के लिए महापुरुष यतन और प्रयास कर रहे हैं कि ये यतन, ये प्रयास, ये विफल ना रहे, ये व्यर्थ ना चला जाए। हर सुनने वाला जिसने अभी ये सच की लखता नहीं की है, ये ब्रह्म की प्राप्ति अगर नहीं की है, जो अभी भी भ्रम और भ्रांतियों में पड़े हुए हैं, तो हर कोई ये सत्य रूपी रोशनी को प्राप्त करें, ये ज्ञान का दीपक जलाएं, आत्मा का भी कल्याण करें और इस मन को भी रोशन करें, और इस प्रकार से ऐसा लाभ प्राप्त करें, ऐसी दोनों जहानों की बाजी जीतें जिसके कारण ये धनता के पात्र बन पाएंगे, ऐसी ही शुभकामना, ऐसी ही प्रार्थना है। तो दास और अधिक शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे ज़्यादा चाहेगा सत्संग जी धन्य।